ओम शांति। आज आदरणीय रमेश भाई जी ने जो वातावरण बनाया यज्ञ का प्रारंभ से लेकर इतिहास सुनाकर, उसी इतिहास की श्रृंखला में मैं थोड़ा सा आगे आपको ले जाता हूँ। वैसे तो हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं, भगवान मिला है, और भी सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने साकार माता पिता की पालना ली है, तो वो सौभाग्य हमें प्राप्त है। लेकिन एक विशेष सौभाग्य जो मिला है, जो हम समझते हैं कि बहुत ही कम आत्माओं को शायद मिला हो, दो चार आत्माओं को ही, वो सौभाग्य है कि हमें अपनी आँखों से, इन नेत्रों से बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने का सौभाग्य मिला। और वह इस प्रकार से मिला कि भले ज्ञान में हम 1961 से 62 से आए, अनेक बार साकार बाबा से मिलना हुआ, लेकिन 17 जनवरी 1969 की सुबह हम माउंट आबू पहुंच गए ड्रामा प्लान अनुसार अपने लौकिक पिताजी के साथ। और इन 17 और 18 जनवरी 1969 को बाबा के साथ साथ रहने का जो परम सौभाग्य मिला, और बाबा की एक एक स्टेज कैसे कर्मातीत अवस्था को प्रदर्शित करती थी, वह देखने का इन आँखों से जो सौभाग्य मिला, उसी को ही मैं शेयर करने के लिए आज यहाँ पर आप सबके सम्मुख हूँ। क्योंकि कोई भी कहानी होती है, वो कहानी चलती रहती है, लेकिन कहानी के अंत की तरफ सबका इंतजार रहता है, उपसंहार की तरफ। तो हमारे यज्ञ पिता ब्रह्मा बाबा, उनके साथ साथ रहने का सौभाग्य तो मिला। अनेक बार बाबा से बहुत व्यक्तिगत चर्चाएं भी हुई, लेकिन समय के अभाव में मैं कुछ उन्हीं बातों को शेयर करता हूँ। 17 जनवरी और 18 जनवरी को जब बाबा से मिलना हुआ, तो देखा कि पहले बाबा से जब भी मिलते थे 1961 से लेकर 68 तक, 10-12 बार मिलना हुआ होगा, आबू में, कानपुर में, दिल्ली में कई बार बाबा से मिलना हुआ। लेकिन जब 17 जनवरी को देखा बाबा से, तो जब बाबा के सम्मुख गए, तो बाबा ने दृष्टि दी, और दृष्टि देते ही बस बाबा ने कहा, बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। यानी कि पहले बाबा से जब भी मिलते थे, बाबा को प्रश्न बताते थे, कोई बात होती थी, सेवा का समाचार सुनाते थे, लेकिन जब कर्मातीत अवस्था को बाबा पहुंच गए थे, तो 17 और 18 जनवरी को ऐसा एक बार नहीं हुआ, लगभग 6 बार ऐसा हुआ कि बाबा से मिलने विभिन्न प्रश्न लेकर गए, कभी सेवा का प्रश्न, कभी व्यक्तिगत उन्नति का प्रश्न, कभी याद का, योग के ऊपर। बस जैसे ही बाबा दृष्टि देते थे, तुरंत मन के भाव को पढ़ करके एक अक्षर भी हमारे बोले बिना बाबा ये कह देते थे, बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाए। तो कर्मातीत अवस्था का एक लक्षण तो हमें ये देखने को मिला, क्योंकि हम सबको भी कर्मातीत बनना है, कि जब हम सब भी कर्मातीत अवस्था के निकट पहुंचेंगे, तो हम सब की भी ऐसी स्थिति होगी जिसे बाबा कहते हैं, जो शास्त्रों में भी वर्णन है, मन जीते जगत जीत। जिसने अपना मन जीत लिया, वो दूसरे के मन को भी सहज ही परख लेगा। और उसके लिए ही हम सब एक ये पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहता है कि संकल्पों पर भी इतना नियंत्रण हो, वृत्ति के ऊपर भी, स्वप्न के ऊपर भी, ऐसा बच्चों का नियंत्रण होना चाहिए कि वो भी हमारे इच्छा के विरुद्ध न चले। और वो बाबा की प्रत्यक्ष स्टेज देखिए कि जो शास्त्रों में भी कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन जीते जगत जीत का एक प्रैक्टिकल उदाहरण ये देखने को मिला। और इसी का ही और 18 जनवरी की रात्रि को जब बाबा क्लास करा रहे थे हिस्ट्री हॉल में, तो क्लास चल रही थी, तो क्लास सुनते सुनते हमें मन में विचार आया, एक पर्सनल बात बताते हैं कि बाबा कुछ हमारे लिए कुछ बोले, जिसमें कोई और भी व्यक्तिगत उन्नतियां समाई हुई हों। तो मन में संकल्प हुआ और बाबा की तो कर्मातीत अवस्था थी, तुरंत बाबा तक वो संकल्प पहुंचा होगा और तुरंत ही बस कुछ सेकंड के अंदर ही बाबा ने 18 जनवरी की रात्रि क्लास में नाम ले करके बस कुछ महावाक्य उच्चार दिए कि देखो ये बच्चा मोहन है, बहुत मीठा बच्चा है, कभी किसी की निंदा नहीं करेगा, और ये कहते कहते संपूर्ण बन जाएगा। तो इस रीति से संकल्प अंदर में था, बिना कहे बाबा तक पहुंचा। जो भक्ति में भी कहते हैं कि भक्त के मन में कोई बात होती है, भगवान से ये वरदान मिले, और भगवान के मुंह से क्या निकलता है, तथास्तु, बस एक अक्षर और कुछ नहीं। बस ये ही बात प्रत्यक्ष ब्रह्मा बाबा की देखने को मिली। तो ये बात केवल सुनने तक ही नहीं, हम सबको भी अपनी ऐसी अवस्था बनानी है कि हम सबके सम्मुख भी भक्त आत्माएं, दुनिया की आत्माएं, बी के आत्माएं बहुत आएंगी अंत में अनेक इच्छाएं लेकर के। कोई साक्षात्कार की इच्छा लेके आएगा, कोई अपनी अनेक प्रकार की दूसरी इच्छाएं लेकर आएंगे, लौकिक अलौकिक। और उस समय ऐसा समय नहीं होगा कि वो बता सके, क्योंकि भीड़ की भीड़ होगी। हम एक होंगे, हमारे सम्मुख वो आएंगे, लेकिन अगर हमने मन जीते जगत जीत की स्थिति प्राप्त की होगी, अपने संकल्पों पर संपूर्ण रीति से नियंत्रण होगा, हर एक के संकल्प को पढ़ करके हम उनके संकल्पों को पूरा कर सकेंगे। और जो गायन है, बस वो आएंगे हमारे सम्मुख, और ये गायन है ना कि बस एक एक के अंदर वो परमात्मा का साक्षात्कार करेंगे, दीदार करेंगे। बाबा ने कहा है कि रोती हुई आत्मा आए, हंसती हुई जाए, आपके सम्मुख आते ही उसका परिवर्तन हो जाए। दुखी आत्मा आए, दुख के सागर में लहराती हुई आए, और आपके सम्मुख आते ही खुशी के सागर में लहराती हुई चली जाए। अशांत आत्मा शांति का अनुभव करती हुई, मुस्कुराती हुई खुशी में चली जाए। और ये कब होगा, जब हमने ऐसी स्थिति प्राप्त की होगी जो हमने सम्मुख ब्रह्मा बाबा के सम्मुख अपनी आंखों से देखी। तीसरी बात, अलग अलग कुछ 7-8 बातें हैं, वो मैं संक्षिप्त में सुनाना चाहता हूं। और 17-18 जनवरी को हमने क्या देखा, बाबा रोज क्लास कराते थे, शाम की क्लास लगभग 9:15 शुरू होती है, शुरू से लेकर 61-62 से तो हम ही देख रहे हैं। मधुबन में आते हैं भोजन आदि करके, जब सब फ्री हो जाते थे तब क्लास होती थी, 8:30-9:30 सब इकट्ठे होते थे, और तब उसके बाद बाबा आते थे मधुबन हिस्ट्री हॉल में। 3 संदलियां पड़ी हैं, 1, 2, 3, तो एक संदली पर बाबा बैठा करते थे, एक दूसरी संदली पर मम्मा बैठते थे, बीच की संदली खाली रहती थी। और जो भी पार्टी आती थी, पार्टी के बच्चे आके वहां बैठते थे, अपना परिचय देते थे, अनुभव सुनाते थे, क्या लेकर के जा रहे हैं और क्या कमी छोड़ करके जा रहे हैं। माता पिता के सम्मुख बैठ करके बस ऐसा अनुभव होता था जैसे संसार की सारी प्राप्तियां हमें प्राप्त हो गई। और जब ऐसी स्थिति होती थी, जब मामा देह त्याग करके चली गई, जैसा अभी आदरणीय रमेश भाई जी ने बताया। तो बाबा ने ही कैसे पूरा मात पिता का पार्ट बजाया, पूरा का पूरा। हमें याद है मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद जब हम गए तो पहले तो मम्मा और दूसरे आकर के सब ख्याल करते थे, सबका बिस्तर है और सब किस प्रकार से आराम में हैं। लेकिन उसके बाद हमने देखा, नया बन रहा था मधुबन में ये लाइट हाउस जिसे बोलते हैं वर्तमान समय, फर्श भी पूरा नहीं था बना हुआ, लेकिन उस समय तो हम बहुत यंग थे, 18-19 साल के, तो बस हम सब लोगों को नीचे बिस्तर मिला हुआ था सोने का। बाबा आए रात को चक्कर लगाने, बाबा ने कहा, देखा, अरे बच्चे तुम यहाँ क्यों सो रहे हो जमीन पर? हमने कहा बाबा बहुत अच्छा है यहाँ पर, कि नहीं 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 चलो चलो। तब लच्छू दादी होती थी, उनका काम था हर एक को एकोमोडेशन और ये सब देखना, बाबा की भी पीए की तरह वो कार्य करते थे। तो बाबा ने कहा नहीं नहीं बच्चे चलो तुम हमारे साथ चलो। तो हमें हिचक हुई थोड़ी, तो बाबा ने कहा नहीं नहीं बाबा के कमरे में तुम्हें सोना है, बाबा के कमरे में। अब छोटा सा 6x8 का कमरा, जो अभी मधुबन में कमरा देखते हैं वो तो बाद में एक्सटेंशन किया है, लेकिन पहले उतना ही कमरा था जितना बाबा का पलंग पड़ा हुआ है, बस वहां पर पूरी दीवार थी और दूसरा ये कमरा तो बाद में एक्सटेंशन किया है। तो हमें तो हिचक हो रही थी, लेकिन बाबा ने कहा चलो चलो। लच्छू दादी ने कहा कि बाबा नहीं नहीं मैं हम इन्हें दूसरा जगह दे देते हैं। बाबा ने कहा नहीं नहीं बच्चे वहां सोएंगे, बाबा वहां कहाँ जगह है पूछा उन्होंने, अरे पलंग है ना बाबा का, बाबा कितने जॉली मूड के, बाबा के पलंग के ऊपर वहां बाबा सोता है, पलंग के नीचे बिस्तर बिछ जाएगा वहां बच्चा सोएगा। देखो हरेक के साथ, जवानों के साथ जवान होके, वृद्धों के साथ वृद्ध होके, बच्चों के साथ बच्चा होके बाबा कैसे चलते थे, और इसीलिए बाबा ने सबका दिल जीता हुआ था। और ये हम बच्चों को भी धारण करना है कि हर आत्मा के साथ हमें कैसे चलना है, उनका दिल हम जीत करके चलें। जितना यहां हमने सबका दिल जीता हुआ होगा, उतना ही बड़े चक्रवर्ती महाराजा महारानी सतयुग में जाकर के बनेंगे। तो उस दिन हमने देखा बाबा का कि रोज क्लास होती थी 9:15, लेकिन उस दिन बाबा ने लगभग 7 बजे ही जमुना प्रसाद भाई को बुलाया, एक भाई को, उन्हें बुला के कहा आज बाबा जल्दी क्लास कराएगा और तुम अनाउंस कर दो। तो माइक वगैरह तो होता नहीं था, एक घंटी होती थी जैसे स्कूल में होती है हिस्ट्री हॉल के बाहर, उन्होंने घंटी बजाई और सबको इकट्ठे हुए अनाउंस कर दिया आज बाबा जल्दी क्लास कराएगा, सब जल्दी 7:45 7:30 तब सब आ जाए। सबने भोजन वगैरह किया और बाबा आ गए। और उस दिन की जो रात्रि क्लास थी वो बहुत ही सबसे न्यारी थी, क्योंकि उस दिन 18 जनवरी की सुबह बाबा ने क्लास नहीं कराई थी। 18 जनवरी की सुबह बाबा आए, मेडिटेशन हॉल में बैठे, दृष्टि दी, सबको योग कराया, लेकिन उस दिन मुरली नहीं चलाई। ये यज्ञ में पहली बारी हुआ और अंत में पूरा योग करा के बाबा ये कह के चले गए, अच्छा बाबा बस, मतलब ना याद प्यार कह के दे करके बाबा चले गए 18 जनवरी की सुबह। तो थोड़ा बच्चों को हुआ कि आज बाबा ने मुरली नहीं चलाई। तो रात्रि में बाबा ने क्लास प्रीपोन्ड करी पहले करके, और बाबा भी लगभग शाम को 7:30-8 के करीब क्लास में आ गए। और उस दिन बाबा का रूप ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल अव्यक्त फरिश्ता। ठंडी के दिन थे तो बच्चों का जो टोपा सा होता है वो एक लंबा सा ऐसा टोपा बाबा ने पहना हुआ था। वहाँ ऑलराउंडर दादी, जो गुलदार दादी की लौकिक में माँ मदर थी, दिल्ली जो उनकी हेड थी, उन्होंने वो सब बना के भेजा था, और हम चूंकि दिल्ली से पास होके आ रहे थे हम ही वो सब सामान लाए थे, बाबा को दिया। तो बाबा ने वैसे ही वो पूरा सफेद वाइट तो हमारी ड्रेस सबकी है, लेकिन उस दिन विशेष करके बाबा वो टोपा और ऐसा मफलर विशेष वो सब पहन के क्लास में आए। बिल्कुल नन्ना फरिश्ता का सा रूप बाबा का लग रहा था। और उस दिन बाबा ने मुरली चलाई, तो उस दिन की मुरली में एक विशेषता थी 18 जनवरी की रात्रि क्लास में कि बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई। हमेशा नहीं तो वृद्ध मतलब एज भी थी, सर्दी का मौसम भी था जनवरी का, और कभी कभी खांसी आ जाती थी बाबा को, लेकिन उस दिन बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई। वैसे जब नॉर्मल क्लास में बाबा मुरली चलाते थे खांसी आती थी तो बाबा क्या कहते थे, देखो बच्चे ये बाबा की सखी है, और खांसी के लिए कहते थे अब बाबा मैं कई बार शिव बाबा को बोलता हूँ बाबा इस सखी से मेरा पीछा छोड़ाओ, ये सखी मेरा पीछा नहीं छोड़ती है। तो शिव बाबा क्या कहते थे, बच्चे ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है, ये तुम्हें चुप तू करना है, बाबा इसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर देखो बाबा तुम्हारे साथ कोई कंसेशन करे तो बाबा को तो सब बच्चों के साथ कंसेशन करना पड़ेगा। तो कितना बाबा अपना रथ दिया, शरीर दिया, ये तकलीफ काफी होती थी खांसी की, लेकिन बाबा ये शिव बाबा से जो वार्तालाप होता था वो कहते थे तो ये शिव बाबा का उत्तर होता था। तो हम बच्चों के सामने भी शरीर का पेपर जब भी आए, बीमारी के रूप में, कोई व्याधि के रूप में, कष्ट है, ऑपरेशन है, किसी भी रूप में, तो हमारे मुख से प्रत्यक्ष दिखना चाहिए बस खुशी की लहर, जरा भी दर्द की भासना या ऐसी भासना ना हो। हर एक को ऐसा लगना चाहिए कि ये जैसे सबसे बिल्कुल अलग है, और बाबा का वही दिखता था। तो इसका भाव क्या है, बाबा कहते थे देखो बच्चे जब खांसी आती है ना, हम लोग देखते थे कई बार बाबा को बहुत कष्ट होता था, आंखें भी गीली जैसे हो जाती थी खांसी के कारण, लेकिन दूसरे ही क्षण खांसते हुए बाबा क्या करते थे, बाबा के पास एक लक्ष्मी नारायण का चित्र रखा रहता था, हिस्ट्री हॉल में अभी भी रखा है, और कृष्ण का चित्र। तो बाबा कहते देखो बच्चे अभी तो ये पुरानी देह है, 5 पुराने तत्वों का बना शरीर है, आत्मा पुरानी हो गई है, तो ये व्याधि और कष्ट ये सब होता है, लेकिन देखो बच्चे कल बाबा जाके ऐसा मिचनु कृष्ण बनेगा, नया शरीर होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, तत्व भी सतो प्रधान होंगे, कितनी बढ़िया दुनिया होगी। बस ये कहते कहते बाबा जैसे अपनी स्वस्थिति इतनी शक्तिशाली कर लेते थे कि खांसी के रूप में जो परिस्थिति आती थी उस परिस्थिति पर जैसे संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेते। हम बच्चों को भी ये देखना है सदा कि कोई भी लौकिक अलौकिक कोई भी परिस्थिति आती है विपरीत, वो हमारी स्वस्थिति पर हावी ना हो, हम स्वस्थिति को इतनी मजबूत कर लें कि हर परिस्थिति के ऊपर वो विजय प्राप्त कर सके। ये सदा बाबा का हम देखा करते थे। और जब कर्मातीत अवस्था अंतिम दिन देखा, पूरा बाबा ने इतनी पौना घंटे तक मुरली चलाई लेकिन एक बार भी खांसी नहीं आई। ये इस बात का सूचक है कि जब हमें भी कर्मातीत अवस्था की प्राप्ति होगी, जब हम भी बिल्कुल अंतिम स्टेज पर, विजयी स्टेज पर होंगे, तो शरीर की कोई भी व्याधि हमें परेशान नहीं करेगी, और जितने भी हमारे शरीर के कर्म भोग होंगे उनके ऊपर हमारा योग बल संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेगा। तो इस बात का हमें पुरुषार्थ करना है जो बाबा का हमने अंत में प्रत्यक्ष रूप में देखा। और क्या पांचवी बात देखी, उस दिन बाबा ने कहा ईशु दादी को, जो अभी भी ईशु दादी दादी कॉटेज में है, बाबा की पीए शुरू से रहे हैं, बाबा पत्र वगैरह लिखते थे, कोई भी बात सब ईशु दादी ही उसका संचालन किया करते थे। उस दिन 18 जनवरी की सुबह बाबा ने कहा बच्ची आज जितने भी पत्र लिखवाने हो सारे पत्रों के उत्तर लिखवा लो, कोई भी पेंडिंग न रहे बचा हुआ काम। और जैसे रमेश भाई जी भी बता रहे थे जो म्यूजियम का जो है मकान, नक्की लेक के पास का, तो वो बाबा वो फाइल भी पड़ी थी और वो फाइल भी बाबा ने उस दिन बिल्कुल क्लियर करी साइन वगैरह करके, हाँ वो मकान ले लो जो नक्की लेक पर म्यूजियम है, और वो म्यूजियम का मकान भी जितने भी पेंडिंग काम थे, बचे हुए काम थे, रहे हुए कार्य, पत्र हो, व्यवहार हो, कुछ भी हो, बाबा ने उस दिन सारे पूरे किए। तो ये इस बात का आभास दिलाता है कि जब हम भी कर्मातीत अवस्था के निकट होंगे ना, तो भले हमें पहले से समेटते जाना है जो बाबा ने कहा, और वो हमने ब्रह्मा बाबा में भी देखा, जब हम बाबा से 62-63 में मिलते थे तब बाबा बहुत देर तक हम लोगों के साथ बैठते थे, कहते थे बच्चे अपनी जीवन कहानी लिख के लाओ, हम लिख करके देते थे, बाबा देखा करते थे, बस जल्दी जल्दी फटाफट 2-5 मिनट में ही, और बाबा की निगाह वहीं जाती थी जहां कोई करेक्शन करनी होती थी, नहीं तो फटाफट बाबा देख करके वो करेक्शन करके देखा करते थे। तो पहले बाबा बहुत समय देते थे, फिर लगभग 65-66 में देखा बाबा के सम्मुख जाते थे, थोड़ी सी बात बोलते थे 1-2 मिनट, बाबा कहते थे बच्चे बाबा समझ गया, अरे बाबा अभी तो हमने बोलना शुरू ही किया है, अभी पूरी बात नहीं कही, कि नहीं नहीं बच्चे बाबा समझ गया, यही तो बोलना चाहते हो, तो हम थोड़ा बोला करते थे, लेकिन जैसा मैंने बताया अंतिम 2 दिन तो एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, और बाबा मन के भावों को समझ करके उनका उत्तर दे देते थे। तो ऐसे ही हमें भी ये सब चीज समेटते जाना है, बाबा समेटते जा रहे थे हर चीज, पूरा कारोबार एक बात होती है, लेकिन मन के विचार भी इधर उधर ना जाएं, अगर सेवा की तरफ भी, वर्तमान परिस्थिति में गुलजार दादी जी एक बार क्लास करा रहे थे कि अभी व्यर्थ संकल्प नहीं चलने चाहिए, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में व्यर्थ संकल्प क्या है, ये व्यर्थ नहीं कि हमारा मन कहीं इधर उधर भाग जाए, लेकिन ये भी व्यर्थ है अगर हम योग लगाने बैठे और योग के समय हमें सेवा का विचार आ जाए, भले जो भी विचार आए अच्छे विचार भी हैं, लेकिन अगर हमारी मन की इच्छा के विरुद्ध हैं, हम योग लगाने बैठे सिर्फ बाबा को याद करना चाहते हैं, दूसरी तरफ भी मन चला गया, भले विकारी विचार नहीं है, व्यर्थ नहीं, लेकिन वो भी वर्तमान समय के परितोष में वो भी क्या है, व्यर्थ गिने जाएंगे, इतने तक बाबा हमें ले जाना चाहते हैं। तो बाबा ने उस दिन ये कह के बच्चे सारे काम समेट, एक हम लोगों के लिए ये इशारा है कि हम लोगों के जीवन में भी जो भी लौकिक अलौकिक कई अधूरे काम पड़े हैं, परिवार के काम पड़े हैं, कोई भी विल करना है, कोई भी टैक्स है, किसी भी परिवार के सदस्य को पावर देनी है ऑफिस में, जो भी जिसकी तरफ हमारी बुद्धि बार बार ना जाए, और हम थोड़ा रिलेटिवली फ्री होते जाए हमारी बुद्धि, बाबा ये चाहता है हम लोग इस तरह समेटते जाएं, और समेट करके तो अंतमते सो गति होगी जो बाबा का देखा। और सबसे मुख्य बात एक जो देखी उसमें बाबा जो हमेशा कहता है बच्चे सदा खुशी में रहो, और बाबा कहा करता था, आप लोगों ने भी सुना होगा, बच्चे खुशी ऐसी हो जो कोई भी गम हो उसे खा जाए। खुशी कैसी खुशी हो, बाबा करके दिखाता, बच्चे क्या करना चाहिए खुशी में, खग्गियां मारनी चाहिए, ऐसे ये सिंधी शब्द है, खग्गियां क्या होती है, बस इतना खुशी हो ये मुझे भगवान मिला है, वो ऐसे बाबा जब करके बताते थे चेहरे पर वही खुशी वैसा भाव, तो बस ऐसा लगता था कि हाँ अब हमारे जीवन में कभी भी कोई गम नहीं आएगा। और बाबा यही चाहता है हम बच्चों से खुशी के सागर में बच्चे सदा लहराते रहें। और इसलिए एक बात और बाबा की विशेष, जब भी बाबा से मिलते थे बाबा ऐसे बाहें पर, आओ बच्चे आओ मीठे बच्चे, बाबा का वो चित्र देखा होगा ना जो मधुबन में भी जाओ और सामने ही दीवार पर पांडव भवन में लगा है, आओ मीठे बच्चे। प्रैक्टिकल में ये होता था, हम लोग बाबा की बाह में जाते थे 1 by 1, और सबसे बड़ी विशेषता क्या होती थी कि जैसे ही बाबा के सानिध्य में आए तुरंत विदेही हो जाते थे, एक सेकंड में शरीर का भान भूल जाता था। और यह कैसे होता था? क्योंकि बाबा ने इतना पक्का अभ्यास किया हुआ था कि मैं आत्मा हूं। आप सबने सुना है लिख लिख करके, मैं आत्मा हूं, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है, नारायण आत्मा। जहां पर भी व्यक्ति की बुद्धि जा सकती है, पत्नी की तरफ, बच्चों की तरफ, व्यवसाय की तरफ, धन दौलत की तरफ, तो बाबा ने लिख लिख करके पक्का किया हुआ था। तो उससे क्या, बाबा की आत्मिक स्टेज इतनी पक्की हो गई थी कि जिसे भी बाबा देखता था वो आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाता था। फिर क्या होता था, थोड़ी देर तक बाबा की बाह में रहे और बाबा बस उस विदेही स्थिति का अनुभव कराता था। और फिर ऐसे बाबा थपथपी देता, आओ बच्चे, आओ आओ मीठे बच्चे, आओ नीचे आओ। क्योंकि आत्मा तो जैसे कोई आत्मा शरीर से नहीं निकलती, लेकिन अशरीरी हो जाती थी, विदेही, देही अभिमानी स्थिति, जिसके लिए अभी हम इतना पुरुषार्थ करते हैं कि देही अभिमानी स्थिति, और बाबा एक सेकंड में उस स्थिति का अनुभव करा देता था। फिर बाबा ऐसे थपथपा के नीचे लाता था, दृष्टि देके और मुंह में टोली खिलाते थे, हालचाल पूछते थे। फिर एक जाता था, दूसरा आता था, हर दूसरे को भी यही अनुभव होता था, तीसरे को भी यही अनुभव होता था। और अंतिम दिनों में, दो तीन वर्षों में, जैसे बता रहे थे बाबा ऐसे वहां से वो नहीं करते थे, बाबा के सम्मुख बस गए, दृष्टि दी बाबा ने और विदेही हो जाते थे। कोई इन्फेक्शन किसी का न लगे, क्योंकि पूरे भारत भर, दुनिया भर से लोग आते थे, बस किसी का इन्फेक्शन एकदम, डॉक्टर ने भी मना किया होता तो बाबा दृष्टि। बाबा अब यही चाहता है हम लोगों की भी दृष्टि में इतनी शक्ति हो कि जिस भी आत्मा की तरफ देखें, जिसे भी दृष्टि दें, वो विदेही हो जाए, अशरीरी हो जाए। और अंत में एक जो विशेष बात देखिए, बाबा ने 18 जनवरी को मुरली चलाई, मुरली चला के बाबा उठे, उठ के बाबा दरवाजे की तरफ चले, एक कदम आगे बढ़ाया, फिर बाबा रुक गए, फिर एक एक बच्चे को दृष्टि देने लगे, एक एक, फिर दृष्टि देते देते ऐसे बाबा, फिर बाबा एक कदम फिर दरवाजे की तरफ चले, फिर रुके एक कदम, फिर बाबा को हो, उस दिन बाबा को हो, आज मैं बच्चों को शक्ति से भर दूं। सामने प्रकाशमणि दादी जी बैठे हुए थे, दादी जी की तरफ बार बार बाबा की दृष्टि जाती थी और वहां बहुत देर तक टिक जाती थी, और बहुत देर तक बाबा दादी को नैन मुलाकात करते हुए शक्ति से भरपूर करते। इस तरह तीन चार बार बाबा रुके हिस्ट्री हॉल से, संदली से बाहर जाते जाते, और दरवाजे पर जाके बाबा ने कहा, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये शब्द बाबा ने पहले कभी नहीं बोले, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट करके बाबा जाते थे, लेकिन पहली बार बाबा ने बोले, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, जो इस बात का प्रतीक है कि बाबा को आभास था ये मेरा अंतिम साकार मिलन है बच्चों के साथ। और इसलिए बाबा ने ये शब्द उच्चारे। ये हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि जब हम भी कर्मातीत अवस्था को होंगे बिल्कुल निकट, तो बाबा की तरह हमें भी आभास होगा, बस अब हम बाबा ये शरीर छोड़ के आपके पास आए कि आए। और शरीर से जैसे बाबा ने कहा है ना, सतयुग में होगा, बिल्कुल पुराना शरीर हुआ, संकल्प हुआ ये शरीर छोड़ के नया बच्चा जाके बनूं, बस तुरंत आत्मा छोड़ेगी। उस स्थिति का अनुभव यहां और उस दिन प्रत्यक्ष देखने को मिला। अभी अगर हमें आभास हो जाए भाई मेरा शरीर अगले इतने देर में छूटने वाला है, सारे संकल्प व्यर्थ उधर ही की तरफ चलते रहेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति हो जाए कर्मातीत अवस्था तक हमारी कि यह आभास हो और बस, हाँ बाबा आपके पास आए और बस चले जाए। बाबा वहां से गए और अपने कमरे में जाकर के बाबा ने दादी के हाथ में हाथ दे करके छुट्टी ली। जैसे बिल्कुल बताते हैं दादी, ऐसे बाबा एक सेकंड में ही न्यारे हो गए। लेकिन आश्चर्य की बात तो उसके बाद देखी। कौन सा आश्चर्य? कि 18 जनवरी की रात को बाबा ने शरीर छोड़ा। सारा 18 जनवरी की रात को शरीर रखा रहा, 19 जनवरी को सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 तारीख की रात और 21 जनवरी को दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया लगभग 1-2 बजे। तो जब इतने समय तक लगभग 65 घंटे तक बाबा का शरीर रखा रहा, कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया था केमिकल, कोई लोशन केमिकल लोशन नहीं लगाया गया था, केवल बर्फ का ही थोड़ा इस्तेमाल किया गया था। लेकिन ब्यूटी क्या देखी कि बाबा के शरीर अंत तक बिल्कुल चमकता रहा, जैसे बिल्कुल नहीं तो अक्सर करके शरीर जैसे काला पड़ जाता है, बिल्कुल चमकता रहा, ऐसा ही लगा कि जैसे बस बाबा अभी सो के उठेंगे। और दूसरी बात, बाबा के शरीर में जितना शरीर आत्मा जब निकल जाती है, शरीर बिल्कुल स्टिफ हो जाता है, अकड़ जाता है, तो अकड़न तो थोड़ी थी लेकिन फिर भी शरीर में काफी हद तक फ्लेक्सिबिलिटी थी। ये प्रतीक है कि ये जो 5 तत्वों का बना हुआ हमारा शरीर है, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश का, तो इनके ऊपर भी बाबा ने संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर बाबा प्रकृति जीत बन गए थे। तो हमें मन तो जीतना ही है, मन जीते जगत जीत तो होना ही है, आत्मा को तो शुद्ध करना ही है ज्ञान योग बल से, लेकिन ये 5 तत्व जो हैं इनको भी हमें पवित्र बनाना है, जो बाबा हमेशा कहते हैं प्रकृति जीत बनो। तो इस तरीके से ये प्रकृति जीत का बाबा का उदाहरण देगा। और प्रकृति जीत कैसे बने, केवल एक बात बताना चाहूंगा कि मानो अभी भी बाबा का आ रहा है, आजकल अभी पेरिस में भी एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस चल रही है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, एकदम प्रकृति का बिल्कुल परिवर्तन हो रहा है जलवायु का, तो ये प्रकृति विनाश का कारण बनती जा रही है, सारी दुनिया कह रही है। तो बाबा ने कहा है जल हमारे विनाश का कारण न बने, हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़े, वो कैसे होगा, हम जल तत्व से मित्रता कर लें, यानी कि जल का गुण धारण कर लें। मित्रता उनमें होती है जिनमें आपस में मित्र एक जैसे संस्कार होते हैं, तो जल में बहुत गुण होते हैं लेकिन एक मुख्य गुण है फ्लेक्सिबिलिटी का, एडजस्टमेंट का। जल को गिलास में लो, गिलास में एडजस्ट हो जाएगा, थाली में लो, थाली में, चम्मच में लो, चम्मच में, हर जगह, क्योंकि फ्लेक्सिबल है, एडजस्ट हो सकता। ऐसे मुझे भी अपना स्वभाव नेचर एडजस्टेबल बनाना है, हर आत्मा के साथ एडजस्ट होके हम चलते चले। बाबा तो कई बार कहा है बंबई नगरी डूबेगी, अभी कल ही पेरिस में जो कॉन्फ्रेंस हुई, सारे दुनिया भर के 196 कंट्रीज से डेलीगेट आए हुए हैं, 150 देशों के हेड ऑफ द स्टेट, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वहां पर आए हुए हैं, उन लोगों ने और साइंटिस्ट ने ये बोला है, 20 देशों के नाम लिए हैं जिसमें हिंदुस्तान के भी 2 देशों का विशेष, 2 जगह का, बंबई कलकत्ता और समुद्र के किनारे जो बसे हुए हैं, अगर ये कंट्रोल नहीं किया गया आगे आने वाले कुछ वर्षों में ये समुद्र के गर्त में समा जाएंगे। जो बाबा ने 1936 में बोला था वो साइंटिस्ट ने आजकल बोल रहे हैं, ये यथार्थता बनती जा रही है। तो अगर हम जल की विनाश लीला से बचना चाहते हैं, जल की तरह एडजस्टिंग नेचर होगी तो जल हमारी अंत समय में रक्षा करेगा, हमारे शत्रुता नहीं करेगे, हमारे प्राण नहीं लेगा। दूसरा तत्व है धरती, जो बाबा ने कहा है विनाश का कारण बनेंगे भूकंप। तो धरती में सबसे बड़ा गुण होता है दातापन का, धरती हमेशा देती है, एक बीज बो दो पेड़ निकल आएगा, हजारों बीज पैदा हो जाएंगे। धरती से ही पानी मिलता है, मिनरल, पेट्रोल, सब्जी, फल, सब चीज धरती से मिलती है। ऐसी बाबा चाहता है हम बच्चे भी धरती की तरह दाता बन जाए, हमारे सम्मुख जो कोई भी आए खाली हाथ न जाए, लेकर के जाए, कोई स्थूल चीज की बात नहीं, हम उसे सहयोग दें, उसे प्रेम दें, शांति दें, आनंद दें, शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग, हमारे भाव उसके प्रति आत्मिक भाव हो, इनमें तो कोई खर्चा होता नहीं। ऐसे ही अगर हम दाता बनेंगे तो धरती कभी भी हमारे विनाश का कारण नहीं बन सकती। धरती में जितनी भी हलचल होगी, हम जितने भूकंप आएंगे, लेकिन बाबा ने कहा है आपके पांव ऑटोमेटिकली उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी। तीसरा तत्व है वायु। वायु में इतने साइक्लोन आते हैं, उड़ीसा में आ गया, बांग्लादेश में आ गया वायु, लेकिन वायु से हम मित्रता कर लें। वायु में सबसे बड़ा गुण है हल्का रहने का। ऐसी हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आए, लेकिन हम हल्के रहें, भारी ना हो जाए। जितना हल्के रहेंगी आत्मा जैसे उड़ती रहेगी, इसका मतलब हमने पर वायु से मित्रता कर ली, तो जितना भी बड़ा साइक्लोन होगा, 250-300 माइल की रफ्तार से हवा चलेगी, जितने भी विनाश का कारण वो बनेगी, लेकिन हम बच्चों का बाल बांका नहीं कर सकती, क्योंकि वायु तत्व से मित्रता कर ली तो वायु समय पर हमें सहयोग देके हमें वो रास्ता बता देगी जहां हमारी सेफ्टी होगी। इसी तरह चौथा तत्व आकाश। आकाश मार्ग से आकाश का सबसे बड़ा गुण क्या है? विशालता। कितना बड़ा आकाश है। ऐसे बाबा ने कहा आप बच्चों का हृदय भी विशाल हो, जो कल परसों वरदान में भी था, इतना दिल विशाल हो बाबा ने कहा, जो सब आत्माओं के प्रति हमारे मन में शुभ भावना हो, शुभकामनाएं हो, तो क्या होगा वो, उसका प्रतीक क्या है? हमारा दिल अगर बड़ा है, उसका प्रतीक ये है हमारे मन के अंदर क्षमा भाव होगा। कोई कैसी भी गलती करी हुई होगी, हमारे सम्मुख अगर आत्मा आएगी, उसके प्रति हमारे मन में नफरत का भाव, बदले का भाव कभी नहीं होगा, क्षमा भाव बस। हाँ, जैसे महान आत्माओं में हमेशा क्षमा भाव होता है, क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें, हार नहीं। क्षमा वीरों का गुण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा वो कमजोर होगा, वो क्षमा नहीं कर पाएगा, जो महावीर होगा वो क्षमा कर पाएगा। तो आज अपने को ये भी हम चेक करें कि मैं कायर हूं, कमजोर हूं या महावीर हूं। किसी के मन में मेरे मन में किसी के लिए बदले की भावना या कोई ऐसी भावना तो नहीं है, इसने मेरे साथ ये किया मैं भी ये करूं। आकाश की तरह विशाल। और अंत में सूर्य। सूर्य का क्या गुण होता है? अग्नि का क्या गुण होता है? अग्नि में जो भी चीज डालो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। कोई भी चीज डालो रूप बदल जाता है। ऐसे ही हमने ऐसी ज्वालामुखी अग्नि का स्वरूप बनाया हुआ हो, बाबा कहते हैं वही सूर्यमुखी है, वही सूर्य का, जो बाबा उदाहरण भी देते हैं, जो सूर्यमुखी फूल होता है ना, उसका मुख सूर्य की तरफ होता है, सूर्य जिधर चलता है उधर ही वो फूल चलता रहता है। तो ऐसे ही अगर हमने सूर्य के गुण, अग्नि के गुण धारण किए होंगे, तो क्या होगा जो मैं बता रहा था, दुखी आत्मा आएगी सुख का अनुभव करके चली जाएगी। हम हर मनुष्य आत्मा की इच्छा को पूर्ण कर सकेंगे अंत में, और तभी दुनिया के मुंह से निकलेगा हाँ यही है, यही तो परमात्मा है, यही तो परमात्मा का ज्ञान है। जब वो हमारे सम्मुख आएंगे, अपनी मन की इच्छा की पूर्ति का अनुभव करेंगे, तब उनके मुंह से निकलेगा जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, वही भगवान की प्रतीति होगी उन्हें। तो अंत में यही साकार बाबा की ये बातें सुनाने का, 18 जनवरी को जो साकार बाबा ने शरीर छोड़ा, और जहां इस अध्याय का, अध्याय चल रहे हैं लेकिन इस अध्याय का जहां अंत हुआ, वो यही संदेश देके जाता है कि हम भी प्रकृति जीत, माया जीत, मन जीत बने और कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करें। ओम शांति, ओम शांति।